राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम।
नारायण 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 राम 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 राम। जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है उनका आश्रय है वही अनिभक्ति में बाधक है। ये बात अन्य आश्रय वही नारायण 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 ऐसा ते भेषा सांख्य बुद्धि योगे तिमां शुरू बुद्धिया युक्त हो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी। ये दो निष्ठा भगवान ने कही है। दो निष्ठा से क्या होता है तो इससे पहला श्लोक है 38वां, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय तो युद्धा युद्धस्व नैवं पाप मोक्षयसि। अर्जुन कहा युद्ध में पाप लगेगा कुरुजनों के मारने से और भी आत्मा न एतान हत्वा अस्माकम पापम इवासि। और भी जिससे आत्मा है उनको मारने से भी हम लोगों को पाप ही लगेगा। आत्ताई की तो शुद्धि होती है दंड मिलने से तो अस्माक तो पापम इवासि। हम लोगों को तो पाप लगेगा, हमारी क्या फायदा है। तो भगवान कहते हैं कभी पाप न लगने का बात है नहीं। वो मनुष्यों के सबके जैसी हुई है कि हत्या करने काट रहे हो तो पाप लगता है, इतनी बात नहीं। गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति घड़ी गहन है। जैसे डॉक्टर किसी के ऑपरेशन करता है सीरा लगा जाता है तो लगाता तो है छुरा परंतु वो पाप नहीं लगता। उसकी नियत उसकी व्याधि दूर करने में है भाव, इस वजह से पाप नहीं लगता। युद्ध में पाप लगेगा ये युद्ध पाप लगे नहीं है। इसलिए स्वर्ग द्वार पाप तो सुविना क्षत्रिय पास लगन से युद्ध की ऐसा तो बहुत कम क्षत्रियों को मिलता है, बहुत की भाग्य से मिलता है। तो खास करके पाप कहाँ लगता है तो उसके बाद भगवान ने बताई कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो दया देव तथो युद्धा युद्धस्व नैवं पाप वाक्षसि। खूब ध्यान दें, भगवद गीता है ये बड़ी सार चीज है। और गीता में अगर विचार कर देखा जाए तो समता का ही वर्णन है आदि से अंत तक। समता आनी चाहिए, समता आ गई तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग लय योग हठ योग सब सिद्ध हो गए। और समता नहीं आई बड़ी बड़ी समाधियां लगा दी बड़ा बड़ा क्या हुई, गीता उसको सर्टिफिकेट नहीं देती। तो पाप नहीं लगने का उपाय क्या है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय जय पराजय और लाभ और हानि और सुख दुख में समान रह करके युद्ध करो चतो युद्धा तैयार हो जाओ एवं पापम न। इस प्रकार से पाप नहीं लगेगा। ये जो मन में अनुकूलता से प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूल घटना परिस्थिति व्यक्ति कोई आती है प्रतिकूल उससे उद्विग्न होते हैं, ये है पापों की जड़ खास, यहाँ पाप लगते हैं। अगर ये हर एक शोक न हो राजी नाराजी न हो तो कोई परिस्थिति आवे पाप नहीं लगेगा, ये खास बात है। चेता आकर के भगवान ने कह दिया एवं पापम न वापस। इस प्रकार से तुम प्राप्त नहीं हुआ, तेरे को पाप नहीं लगेगा। ये बात भगवान ने बड़ी विलक्षण और लोग विचित्र बात बताई, पाप न लगने की युक्ति बताई, संसार में न फंसने की बात बताई, समता। तो किस में समता? जय पराजय और हानि और लाभ, जय में लाभ होता है, पराजय में हानि होती है, और उसमें परिणाम में सुख और दुख होता है। वो सुख और दुख समान कर लो आप, परिस्थिति कैसी आवर उसमें समता रहनी चाहिए, सम रहो। तो सम हम कैसे रहे कि सम है आप, ध्यान दें कृपा कर थोड़ा सा। सुख में भी आप रहते हैं, दुख में भी आप रहते हैं, आप में फर्क नहीं पड़ता है। उस परिस्थिति के साथ मिलकर के सुखी दुखी हो जाते हैं, आप तो वैसे ही वैसे ही है। तो उसमें समता रहो, मानो अपने में रहो। तो सुख दुख में समान कैसे रहे? तो भगवान बता, सम दुख और सुख स्वस्थ, स्वयं स्थित रहो तो सुख दुख सम हो जाओगे। स्वयं स्थित करना क्या? आप स्वयं एक रस रहने वाले हो, नित्य निरंतर रहने वाले हो, और ये संयोग भी होने वाले संसार है सब। तो स्वयं में स्थित रहो तो समता रहेगी। सुख और दुख तो आगंतुक है, सुख आता है कभी दुख आता है, कभी दुख आता है कभी सुख आता है। इसमें सम कैसे रहे? ध्यान दें आप लोग, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो भेद क्या हुआ बताओ? ध्यान दिया कि नहीं अपने? अनुकूलता से सुख होता है, अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम। तो सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो दोनों फर्क क्या है? बोलो संकोच बोलो। मन सुख के एक तरफ अच्छा है, एक तरफ बन रहा है, दुख के भी एक तरफ अच्छा है, एक तरफ बन रहा है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। दोनों तोल कर देगा तो छोटा बड़ा कौन सा है? तो आप रहते हो तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहे, आप नित्य निरंतर रहने वाले हो। अवस्था बदली है, शरीर बदल रहा है, देश बदल रहा है, काल बदल रहा है, परंतु आप हैं जो ही है। आपको तो मैं वही हूं जो बचपन में था, तो आप वही हो। तो आपका स्वरूप सम है, उसमें आप स्थित रहो अपने स्वरूप में। तो अपने स्वरूप में सम होने की बात बताई, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय ततो युद्धा युद्ध नैवम पापम वापसी, एवं पापम न वापसी, फिर पाप नहीं लगेगा। तो अगर इस लोग कहते ऐसा ऐसा क्या ये संबुद्धि सुख दुख के समर्थ ऐसा, ये एतत् शब्द है ना, ये समीप का वाचक है, इदम शब्द थोड़ा सा दूर का वाचक है, तत्त सब दूर के वाचक है। ऐसा ये जो भी गई सुख दुख के समय कृत ऐसा ऐसा संबुद्धि सांख्य अभिहिता, सांख्य योग में तो हमने कह दी सम दुख सुखम धीरम सोम सत्वाय कल्पते, उसमें बता दिया अविनाशी विनाशी दोनों का विवेचन करके और समता को बता दिया। भाई नाशवान नाशवान है, अविनाशी अविनाशी है, पर सुख दुख किस बात का? फिर राजी नाराजी किस बात की? अंत मंत्र में देया और अविनाशी तत्व दी ये समझ था हूं। अविनाशी अविनाशी रहेगा, विनाशी विनाशी रहेगा, फिर मन में राजी नाराजी क्या है, ये तो है ही है। तो सांख्य की दृष्टि से समता कैसे प्राप्त हो, ये तो बात मैंने कह दी। अब योगे तो इमान सुनो, अब कर्मयोग के द्वारा ये समता कैसे हो, ये मेरे से सुन। ये आरंभ का 20 का श्लोक है, ये साथ भी था सांख्य। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछा कि ध्याय से चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन, बुद्धि आपके मत में श्रेष्ठ, अभी खोले कर्म में मेरे क्यों लगाते हैं, मिले हुए वाक्यों से बुद्धि मोहित से करते थे, निश्चय करते एक बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा पर, मैं दो प्रकार की निष्ठा पहले कही है, तो पहला अनादिकाल से कही है वो, और पहले अध्याय में ये सुख दुख के समय करता, ये समता सांख्य में पहले कही है, योग में आप सुनो। सांख्य ज्ञान योग सांख्य नाम और कर्म योग नाम, ये संबुद्धि है। तो ऐसा निष्ठा निष्ठा मैंने कह दी, निष्ठा स्थिति कर्मयोग से कर्मयोग स्थिति होती है, ज्ञान योग ज्ञान योग से। तो मैंने कही तो ये किसी इसी तरह श्लोक है, इस श्लोक तरह लक्ष्य है सुख दुख के समय करता है, ऐसा ते बेता सांख्य बुद्धि योग तमाम सुनो, ये भेद बताता है। ये श्लोक कहता है सांख्य में कह दिया, योग के विषय सुनो। ये तीसरे श्लोक में कहा लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता, दोनों प्रकार की निष्ठा मैंने पूरा पुरुष में अध्याय प्रभुता पहले अध्याय में कहा। तो दो निष्ठा बताई तुम, वो एक निष्ठा ऐसा थे बेटा सांख्य, सांख्य में तो कह दी भैया योगे तो इमाम सुनो, अब योग के विषय में इमाम सुन इमाम, ये इदम सब दिया ऐसा बहुत नजदीक अभी कहकर आए, ये इमाम अगर बता दे कर्म निवारी कर उसके माँ फलेश पदार्थना वहां बताए योग कुल कर्माणी क्या कि सिद्धि सिद्धि समूह भूतवा सिद्धि सिद्धि में समूह और करो, ये समूह कहेंगे ये थोड़ी दूर है और सुखदेव नजीक है, ऐसा थे वैसा सांख्य। तो तत्शब्द है वो, ये इदम शब्द है, ये अंगुल इंद्र जैसे गवाच नजीक ही हो, और ऐसा ये तो शब्द है बिल्कुल नजीक का ये है, यहाँ नजीक गवाच। तो ऐसा तो कह दिया, और इमाम सुनो इसको सुनो, योग के विषय में इसको सुनो, इसी समता को। तो सिद्ध सिद्ध समूभूतवा समत्वम योग उच्चते ये कहेंगे अगाड़ी, तो उसका उपक्रम करते हैं यहाँ। तो ऐसा ते भी था सांख्य बुद्धि योगे तो इमान सुनो, क्या होगा महाराज बुद्धिया युक्त हो या पार्थ कर्म बंधन प्रयासी, इस बुद्धि से युक्त होने पर कर्म बंधनों का त्याग हो जाएगा, कर्मों का बंधन नहीं रहेगा। कर्म बंधन क्या सुकृत हो गए, इसमें जो राजी नाराज होना ये कर्म बंधन है, इनसे तुम छूट जाएगा। समता आ गई ना सिद्ध सिद्ध समभूतवा, और वहां समतु को सुखम धीरम सो अमृतत्व कल्पते मुक्ति का पात्र होता है। तो समता एक ही होती है, उसके प्रकार वो है ज्ञान योगी ने सांख्य नाम और कर्म योगी ने योगी नाम। सांख्य योग से ज्ञान योग से तो सांख्य योगियों की होती है, कर्म योग से योगियों की होती है कर्म योगियों की, ये अलग अलग दो मैंने कही। तो उसका ये श्लोक है सुख दो द्विविध निष्ठा का निर्देश। अब योग के विषय सुनो, तो योग के विषय में आ गया या समुद्र को सुगुण धीरम सो अमृतत्व सुगुण धीरम सुनो तो, और वहां पर सिद्ध सिद्ध समूतवा समतम योग उच्चते समता से कल्याण हो जाता है। तो समतम योग उच्चते ये अगाड़ी कहूंगा, ऐसे कह करके भगवान ने इस कर्म योग की महिमा में चार बातें बताई है, चार बातें। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसी बुद्धि से युक्त तो तुम होता हुआ कर्म बंधनों का त्याग कर देगा, कर्मों का बंधन नहीं रहेगा, ये समता आ जाएगी, ये बुद्धि आ जाएगी, कर्म बंधन नहीं रहेगा। शुभा शुभ फले मोक्ष से कर्म बंधन नहीं, ये शुभ अशुभ दोनों कर्म बांधते हैं, शुभ कर्म स्वर्ग में ले जाते हैं और अशुभ कर्म नरकों में 84 लक्ष योनि में ले जाते हैं, दोनों ही बांधने वाले हैं। बंधन से मुक्त तो दोनों को समता करे सुख, सम दुख सुखम धीरम सोमृत आय कल्पते, सम दुख सुख है सिद्ध के लक्षण में लिखते हैं, क्योंकि स्वस्थ है वो स्वयं ऐसे थे, स्वयं में सुख दुख नहीं है, स्वयं में समता है। यही तेल देता स्वर्गो ये शान साम्य से तंग माना, उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया, इस जीवित अवस्था में ही जीत लिया। किसने? ये मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन पुरुषों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, वे संसार से ऊंचे उठ गए। ये संसार के जो राग द्वेष थपेड़ रखता है इधर उधर दुख पाता है, ये इनसे उद्भूत हो जाता है, समता आ जाती तो उसे परवाह नहीं करता, आता है सुख भी आता है दुख भी आता है। तो एक तो आपको बताया समता के लिए एक तरफ सुख एक तरफ दुखी है, और दूसरा ये बताए खूब ध्यान दे कि ये ठहरता नहीं है, न सुख ठहरता न दुख ठहरता है। हम मुंह से क्यों दुखी हो, क्यों सुखी हो, ना सुख ठहरता ना दुख ठहरता है, इस वास्ते समता ठहरती है, समता रहती है, आप पकड़े चाहे न पकड़े, आप धारण करें चाहे न करें, पर समता मिटती नहीं है और विषमता टिकती नहीं है, ठहरती नहीं, कभी सुखी होते कभी दुखी होते, थोड़ी थोड़ी दूर में परिवर्तन होता है इसका। इंसान साम्य स्थितम बना, मन जिसका साम्य अवस्था में स्थित हो गया, स्थित हो जाए समता में स्थित होगा, सुख दुख में स्थित नहीं होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता में मन स्थिर नहीं होता, दोनों के समता में स्थित होता है। तो समता में स्थित होने क्या है कि वो तस्मात ब्रह्म से निर्दोष है, सोम ब्रह्म, सोम ब्रह्म है, और मन समता में स्थित हो गया तस्मात ब्रह्मणी से स्थित, वे ब्रह्म में स्थित है। ध्यान देने की बात कैसी बढ़िया है, समता में स्थिति है वो परमात्मा में स्थिति है, जितनी आप समता रखें जितनी रख सकें वो साम्य स्थिति है, कैसी बढ़िया बात है। जितने ही विषमता में आ जाते हैं उतने ही संसार में फंस जाते हैं। तो बुद्धिया युक्त हो या पार्थ, जिन बुद्धि से युक्त हुआ तू या बुद्धिया युक्त कर्म बंधन प्रहास, कर्म बंधनों का त्याग कर देगा वो, आप त्याग कर्म बंधन प्रहास। कितनी विशेष बात, कर्म के बंधन नहीं रहेंगे, ना शुभ रहेंगे ना अशुभ रहेंगे, ये हर एक शोक राजी नाराजी ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता इसमें जो आपको फर्क पड़ता है ये है बंधन का खास कारण, परवाह नहीं। मन के अनुकूल जाए तो वही मौज है और मन के प्रतिकूल तो वही मौज है, शरीर में बीमार आ जाए बीमारी में वही आनंद है और स्वस्थ हो जाए तो वही आनंद है। थोड़ा सा विचार कर तो ये समता रह जाएगी, ये कठिन नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध है, विषमता तो बनावटी है, संयोग जन्य है, सुख का संयोग हुआ तो हर्ष हो जाता, दुख का संयोग हो तो शोक हो जाता है, और सुख दुख हरदम रहते नहीं, तो ये बनावटी आगंतुक है, और इनसे रहित है अपना सम दुख सुख स्वस्थ स्व है वो सुख दुख से रहित है, समय अपना स्वरूप सदा समय, ये राजी नाराजी होने यही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगो ऐसी गुण संग गुण जो सत्वर समय इनके साथ संग आसक्ति है इसका असर पड़ता है, इससे जन्म मरण होता है। अगर इससे आप अपने ऊपर असर न पड़ने दे, स्वामी सत्वाय कल्पना से। खास बात है ये, कर्म बंधन प्रायसी, कर्मों का बंधन कोई सा नहीं रहेगा, न स्वर्ग आदि का है न नरक आदि का है। मानो सुख का बंधन दुख का बंधन, बंधन दोनों बंधन है। एक को लोहे की जंजीर कह दो, एक को सोने की कह दो। दुख में बंधता है लोहे की जंजीर में, वो सोने की जंजीर में। बंधन में क्या फर्क है, सोने से बांधो चाहे लोहे से बांधो, बंधन तो एक ही है। देखने में सोना अच्छा दिखता है, फायदा क्या हुआ, लाभ तो नहीं हुआ। ऐसे सुख बांधता है वो सोने की जंजीर है, दुख बांधता है ये लोहे की जंजीर है। दोनों बंधन कारक है, तो समझो बंधन है दोनों। दोनों से ऊपर उठने से मुक्त हो जाता है, इतनी बात है ये। तो सुख दुख के समय कृत्वा ये श्लोक बीच का है, ऐसा थे बीच का सांख्य, ये संसार सांख्य में कह दी, योग में सुनो। क्या फायदा होगा कर्म बंधन प्रयास से, ये बताया ना। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, जिस बुद्धि से युक्त तू हो जाएगा, तेरे में समता आ जाएगी, तो फिर कर्म बंधन प्रहसी, कर्म बंधन का तू त्याग कर देगा। यही युवाग त्याग ही है, कर्म बंधन प्रहस प्रकट से जहास, बिल्कुल त्याग कर देगा, बिल्कुल कर्म बंधन। एक बात, चार बात कहने कही थी, चार बात कही है। कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए वो समझा बताता हूं। एक पहला तो ये कर्म बंधन से रहित हो जाएगा, ये इसका खास फल है। बंधन नहीं है, बंधन सब विषमता में है, समता में बंधन नहीं है। निर्दोष सम ब्रह्म, ब्रह्म सम है, ब्रह्म सम ब्रह्म बनता नहीं, सब सम है। भगवान ने भी कहा कि नमान कर्माण निम्बंती, न मे कर्म फले, कर्म फल की स्प्रिया नहीं है। कर्म फल सुख दुख दोनों होते हैं, तो सुख में स्प्रिया होने से दुखदायी होता है, और सुख में स्प्रिया नहीं होते तो हर हालत में खुश रहता हूं। इस बार तुम जो कोई काम करो, अनुकूलता की स्प्रिया मत करो, चाहना परवाह, और दुख है क्यों आ गया द्वेष मत करो। ये तो आते थे क्या राजीव और क्या नाराज हुए, ये तो बदलते हैं अरंगम दिन राशि, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आते रहते हैं। तो इसमें अपने विषमता नहीं होनी चाहिए, मस्त रहो। मस्त कैसे रहे, भगवान स्वरूप देखो और सुख दुख की तरफ। एक दोनों में सुख दुख में बरोबर दुख है, बरोबर सुख है, एक ये रहता नहीं, फिर रहता नहीं। आप फिर रहने वाले, आप फिर रहने वाले आगंतुक से क्यों घबराते हो। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं होते। जो सुख दिखता है वो भी दुख का कारण है, संसार में सुख है वही दुख का कारण है। तो सुख में दुख देखना चाहिए। अगर शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो सुख में दुख देखना चाहिए। इसका फल सुख दुख होगा, सुख हुआ है इसका फल दुख होगा। ये माताएं है ना, इनकी गोदी में बालक होता है, बालक बिना कारण ज्यादा हंसेगा तो माँ को दुख हो जाता है। बालक हंसता क्यों है इतना, ज्यादा हंसता है तो कोई आफत आवेगी, अब कोई बीमारी आवेगी, कोई खराबी काम होगा। आजकल से जानते जानते पुरानी माताएं थी, जानते थे कि बच्चा बिना कारण क्यों हंस रहा है, क्या बात है, खुश हो रहा हंस रहा है, अब दुख पाना पड़ेगा, सब दुख आए, कोई बीमारी आएगी, गुहानी होगी, कोई न कोई आफत आएगी, होता है। तो सुख में राजी होने से दुख भोगना ही पड़ता है। संसार के सुख रहने वाला कभी दुख से बच सकता ही नहीं, नियम है ये। सुख भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा, और सुख भोग कर राजी नहीं होगा, दुख नजीक नहीं आएगा, भाग जाएगा। ये अटकल है, एक युक्ति है, एक विद्या है। अगर आप लोग पकड़ रहे आज ही, न प्रतिष्ठित प्रियम प्राप्ति है न द्विजय प्राप्ति सा प्रियम सुख हर सही जड दुख बेरकाई सुख हर सही जड हम दुख पावे सुख पावे थप्पड़ लगे और फिर लोग सुख चढ़े मूड गए दोनों बरोबर है कि बस योगी है ये बड़ी प्रशंसा तो लोगों में प्रशंसा हमारे आराम अरे हम दुख पावे लोग लग रहे क्या क्या बात अरे बताओ ये क्या लाभ देते हो क्यों सुखी दुखी बाबा नहीं मांगे ऐसी बात है कर्म बंध सब छूट जाएंगे अभी अभी इसी इसी जन्म में आपसे आप इसी क्षण ही आपने आप छूट जाएगा आज से पक्का विचार करो सुख आओ तो हर्षित नहीं होना है क्योंकि रहने वाला नहीं है दुख आओ तो उस दिन नहीं ये रहने वाला नहीं है ना रात रहने वाला ना दिन रहने वाला ये तो बदलता है आता रहता है अब क्या राजी क्या नाराज हो इसमें नई बात क्या हो गई नई बात क्यों नहीं हुई होता है ऐसे तो कोई बात नहीं आ जाओ तो इसके त्याग करने से क्षमता के रखने से कर्मबंधन प्रहस्त एक बात बताए दूसरी बात बताते हैं कि नेहा भी क्रम ना सोचती इसके अभिक्रम का नाश नहीं होता और आरंभ भी कर दिया ना क्षमता का थोड़ा तो वो अक्षय होगा भगवान के लिए कर्म करो तो वो अक्षय होगा कर्म से तदर्थी हूँ सदित्या वो कर्म सत हो जाता है भगवान के लिए कर्म सत हो जाता है और अपने लिए कर्म दुख दो असत हो जाता है नाशवान हो जाता मानने वाला हो जाता है हमने एक पुस्तक में बड़ी विचित्र बात पढ़ी समझे आप ध्यान दो भाई हमारे को अच्छी लगी अच्छी लगी वही कहते हैं हम क्यों भक्त अपनी इज्जत चाहता तो अच्छी बात करने से इज्जत होती है उसकी क्यों कर तो अच्छी बढ़िया बात है ऐसी बात विचित्र पढ़ी आपने कि सत्कर्म और असत कर्म क्या है कि जिसमें अपना स्वार्थ है वो असत कर्म है और जिसमें असंग अपना स्वार्थ नहीं दूसरों कर्म वो सत्कर्म स्वार्थ सिद्ध होता है वो असत कर्म है चाहे कितना ही बढ़िया हो कितना ही घटिया हो असत कर्म कैसी बढ़िया बात होता है ऐसे जिसमें स्वार्थ का त्याग है वो सत्कर्म हो गया सत का नाश नहीं होता नेहा भी कितना सोचती सत का नाश कैसे ना भाव भी देते सदा सत का अभाव नहीं होता तो ये बात बड़ी अच्छी लगी बढ़िया बात की ये तो गीता की सार बात बता दी असत कर्म हो जिसमें खुशी आती वो असत कर्म वो खुशी कौन सी अनुकूल परिस्थिति से होने वाली खुशी वो बांधने वाली भगवान में मन लग जाए खुशी वो बांधते नहीं वो ही थोड़ा बांधते है सात्विक सुख भी सुख संगेद ज्ञान संग्रह बांधता है बांधता उसका बंधन और ये संसार के सुख का बंधन दो है संसार का बंधन तो दांत का नरकों में और वो जो सात्विक सुख से सुखी होते हैं वो सुख अटका देता है पुनाती तो नहीं होने देता वही बांध देता है वो नरकों में नहीं डालता है ये अच्छा है राग द्वेष भी युक्त विषयान इंद्रिय शरण राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों को आचरण करे और विजय आत्मा अपना अंतर्गण वर्ष में है राग द्वेष रहित इंद्रिया है विषयों का आचरण करे तो क्या होता है प्रसाद अधिगच्छति और प्रसाद सर्व दुखाना महाने प्रसाद की प्राप्ति प्रसन्नता के और प्रसन्नता से सब दुख मिट जाते सब दुखाने और प्रसन्न चित्वारे की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में सिद्ध हो जाती है विषयों का आचरण करने से ध्यान देना राग द्वेष व्युक्तेषु विषयान इंद्रियै शरण आचरण से बात होती है और विषयों का ध्यान करे तो कि जाए तो विषयान पुरुष संघर्ष से रुक जाए थे आश्रित हो तो संघासन थे काम और काम में बाधा लेने जाए क्रोध क्रोध से स्मृति स्मृति भरोसात बुद्धिनाश हो बुद्धिनाशात प्रणश्यति ये नवबुद्ध जीवन आ प्रणश्यति पहुंच गए कब पहुंच गए कि विषयों का ध्यान करने से आपने ध्यान दिया नहीं, फिर ध्यान देने को। विषयों का आचरण करने से तो मुक्ति हो जाए, विषयों का चिंतन करने से बंधन हो जाए। पितृ में राग पूर्वक आप सेवन करते हो तो उसे फंस जाओगे। राग द्वेष रहित समता से आचरण करते हो, राग द्वेष रहित तो प्रसाद मत गच्छति, प्रसाद सर्व दुखाने वाली। तो न प्रदेश प्रियम प्राप्त नृद्वि प्राप्त सा प्रियम, प्रिय रहो, प्रिय तो होगा भाई। अभी घाम में उठे तो अच्छा नहीं लगता, छाया अच्छी लगती है, ठंडी में गर्मा हवा अच्छी लगती है और ठंडी हवा बुरी लगती है, और सर्दी में गर्मी अच्छी लगेगी, गर्म हो जिसमें ठंडी हवा अच्छी लगे, अनुकूल समय राजी हो जाए प्रतिकूल तो बंद आ जाए। ये भोग है, ये ही संस्पर्श जा भोगा संयोग जन्य भोग है। ये तो दुख योने, ये दुख के कारण है, खास दुखों के जनक है, दुखों की खानी है, दुख ही दुख बने, दुख ही दुख। तो संयोग जन सुख की चाहना है, ये खास बात रह गई है। तो कह जाएगा सम दुख सुखम धीरम सुदुख समय कृत्वा, तो इसके क्या होगा कर्म बंधन प्रयास इसी नेहाभिक्रमणास होती, इसी के ऊपर कर्म नाश नहीं होता। आपने कर्मयोग शुरू कर दिया, कर्मयोग क्या सुखी दुखी नहीं होना, जो आपसे आप अनुकूलता है प्रतिकूलता, तो अनुकूलता में खुशी नहीं होना ना भाई। बालक हंसता है तो रोएगा, विशेष रोएगा, तो ये हंसना अच्छा नहीं है, अनुकूलता में खुशी होना अच्छा नहीं है, दुखी होना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा दुख, इस वास्ते उसमें सुखी न हो। तो सुखी दुखी न होने से ये कर्म अभिक्रम हो गया, उपक्रम हो गया, आरंभ हो गया। जहां सुख दुख में आप सम रहे वहां कर्म योग का आरंभ हो गया। आरंभ का नाश नहीं होता, आरंभ का विनाश नहीं होता। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए कहता हूं। वर्षों तक गीता का व्याख्यान करता रहा, वर्षों तक गीता के ऊपर व्याख्यान देता रहा, समझाता रहे लोगों को, सुनाता रहा। ये अभिमान है और समझा दूंगा, अभिमान है तो ऐसे में सुनाता रहा, परंतु नेहाभिक्रमणा सोचते इसका अर्थ नहीं आया ठीक तरह से, समझे नहीं, मन में खटकता भी क्या बात है। उपक्रम मात्र का भी, आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता, आरंभ कर दिया छोड़ दिया तो नष्ट हो गया, नाश कैसे नहीं होता, क्या बात है। ये टीका लिखने लगे ना तब पता लगा, ध्यान विशेष देना पड़ता है लिखने में, लिखने के द्वारा हुई तो अचानक लाखों आदमियों के सामने जाएगी वो चीज, तो कुछ ध्यान देंगे, बोलो भाई, बोलने में 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000 आदमी होते हैं, पर लिखी हुई बात तो और होती है। इस बार तो मारवाड़ी एक कहावत है, 100 झकियार एक लिखिया, 100 बात कह दी तो 100 निर्देश, एक लिख रहे तो पक्की हो जाएगी, एक लिखिया 100 झकिया झके, और एक लिखिया तो विचार आया, तो उस पर विचार आया हमारे मन में, तो हमारे अर्थ ही बहुत बढ़िया मिला। अभिक्रम नाश नहीं होता इस प्रकार से, आरंभ का नाश नहीं होता, यह संतुष्ट नहीं है, ये अभिक्रम नाश होती, अभिक्रम मानो उपक्रम मानो आरंभ, उसका नाश नहीं होता। हाँ नाश नहीं होता, तो यही तो बात समझ में नहीं आई हमारे, वर्षों तक समझ नहीं आई, अब बताऊ आपको क्या समझ में आई। निष्काम भाव से थोड़ा भी काम किया है तो उसका नाश नहीं होता, क्यों कि सकाम तो कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है और दुष्कर्म है वही फल देकर नष्ट हो जाता है, पर फल हम चाहते ही नहीं, समता से गया है तो कभी नाश नहीं होगा, वो तो है जो ही रहेगा और आगे बढ़ाएगा, फिर निष्काम है उसका नाश नहीं होता, कामना है ही नहीं है? भगवान राम जी हनुमान जी के ऋणी हो गए। गोस्वामी महाराज ने बिना पत्र लिखा है, मैं ऋणी हूं भाई, तू पत्र लिखा, मेरे से खत लिखा ले, मेरे पर खेते तेरा ऋण हुआ, मेरे पर धनी के तू पत्र लिखाओ, तू धनी गए, खत लिखने वाला नहीं, वो जाने धनक नामा, उसमें धनिक का नाम होता है, लेने वाला होता है वो धनिक, धनी के तू पत्र लिखाओ, तुम धनिक है, मैं ऋणी। भागवती में रामायण वाल्मीकि में लिखा है कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋण चुकाना नहीं चाहता, तुमने जो हमारा उपकार है मई ये जीर्णता में आ तू वो मेरे में ही पस जाए सफाई, यह तो उपकृत उनको पे, तुमने जो उपकार किया हमारा वो मेरे में ऋण रहे, ऋण को ऋण ले जाऊ मैं तो सदा ही मेरे पर ऋण ही रहे। कैसी बात बोली, ऋण दो आदमी रहते हैं सुनिए, एक तो अभाव वैद्य के अवचारा और एक बेईमान ऋण से आता नहीं, तो भगवान ना तो है बेईमान ना है अभाव, तो ऋण क्यों रहते हैं, और ऋणी कौन रहे क्यों रहेगा, सब भला आदमी पास में पैसा हो ऋण रहेगा, पहले ऋण उतरेगा। मारवाड़ी कहा लड़ो भलो न बाप को, पेंडो भलो न कोष को, बेटी भली न एक, लड़ो भलो न बाप को साहेब राखे थी भगवान ही राखे, लड़की एक हो जाए तो आफत हो जाए, अब ब्याहनी करनी क्या करे, एक कोष बोली है चलना तो फेड़ो भलो न कोष को, बेटी भली एक, लेनो भलो न बाप को, बाप का भी ऋण है चुकाना पड़ेगा, ठीक नहीं किसी का भी, बाप का ही नहीं तो और किसी का ऋण तो खराब है ही, ये भगवान की कृपा रख, तो वो ऋण हो गया। तो राम जी कहते हैं मैं ये जीर्ण साम या तू मेरे में पस जाए तो बस, ये तो यो प्रसंग कपे कपे हनुमान, तुमने जो हमारा उपकार किया वो मेरे में भेजा है, क्यों महाराज आप ऋणी क्यों रहना चाहते हो, कि नर प्रत्युपकारार्थी विपत्ति भविवांछित, एक भाई अपने भाई से मिलने गया, कोई मित्र था तो उसने और नहीं कहा तो बीच में घर आ गया, चलो मित्र से मिलने थोड़ा, वो मिलने गया तो मित्र को आ गया बुखार, बुखार आया हुआ था और घर में और कोई था नहीं, तो उसने जल गर्म किया, वो दिया पथ दिया, सिर चापे करी पग चापे करी सिर दबाया, ठहर गया वहां कि भाई बीमार पड़ा है, सेवा करना कोई है नहीं, जब बुखार उतर गया ठीक गया तो जाने लगा, तो उन्हें कहना लगा भाई मेरा ऋण कैसे उतरे, ऐसे उतरा कि तुम पर हो बीमार, सेवा करने वाला कोई है नहीं, सुन फिर मैं आऊं तुम्हारी सेवा करूं, तब ना ऋण बदला उतरेगा, तो बदला उतारने के लिए चाहते हैं तुम्हारे बुखार आवे, समझे, तो हनुमान जी कहते हैं तेरे उपकार किया तो तेरा बाप तो निकाल दे जंगल में, और तेरी लुगाई ले जाए लोग, फिर आप तुम आवे फिर से मैं तेरी सहायता करूं तो ऋण उतरे, मैं चाहता ही नहीं तेरा सा काम पड़े ही नहीं कभी, मैं तो ऋण रहू मैं तुम्हारे को वापस ना आवे, तो महाराज सच्चे उपकार का ऋण नहीं उतरता है, इस बात में कहते हुए माँ का बड़ा भाई जन है, माँ का ऋण उतार नहीं सकता, कह देते हैं कि माँ के पैरों में मेरे चमड़े की जूती बातें बढ़ाते पढ़ने तो नहीं है, एक ही नहीं सुना अभी तक मैंने कि किसी लड़के ने अपने चमड़ी से उतार करके और चमड़ी की माँ को जूती पहरा दी हो, सुना ही नहीं है, बात बनाते परंतु अगर पहरा भी दे तो उसको पूछे चमड़ा कहाँ से लाया तुम बता, ये बाजार से मिलता है, ये तो माँ का यंग है, माँ से जन्म है, ये तो माँ का यंग, तेरा क्या है इसमें, कुछ भी कर दे तो माँ के ऋण कैसे उतरे। तो फिर तो माँ तो हरी जाओ, वहां माँ मिलेगी, फिर ऋण ही नहीं रहेंगे, बात तो ऐसी भी तो रहेगी। तो उन्होंने कोई उपाय कि माँ की राजी लो, राजी होने से माफ हो जाता है, उतारने से माफ छोड़ दिया, छोड़ दिया तो ऋण माफ हो जाएगा, उतरेगा नहीं। ये बात है सब, इस बार से सच्चे उपकार का ऋण नहीं उतरता, कर ही नहीं सकते। भेट में वस्तु नहीं तिहू लोकन में, ब्रह्मानंद समान तो हो या नहीं, धन माणक लाख करोड़ दिया। ऐसी बात तो अच्छे पुरुषों का ऋण होता है, वे कृपा करके माफ कर देते हैं, ऋण नहीं उतार सकते हम। तो दूसरे ने जो उपकार किया है हमारा, उसको भूलना नहीं चाहिए कभी। माँ का बड़ा भारी उपकार, जो शरीर से परमात्म तत्व की प्राप्ति करते हैं, यह समता की महिमा, वो समता प्राप्त कर ले जिस शरीर से, वो शरीर जिस माँ ने दिया, कितना माँ का उपकार है, कितना बड़ा उपकार है। बड़ी विचित्र बात है, आदमी अगर विचार करे तो सच्चे हृदय में एक बड़ी हलचल मिलती, शांति अशांति दोनों होते पैदा। कैसी कृपा करी माँ ने, जन्म दिया, अपने शरीर का दूध पिलाया। बोलो ऐसा कौन उपकार करने वाला है संसार में कोई, अपने दूध पिलाया, खिलाया, टट्टी पिसाब साफ किया, सब काम किया माँ ने। गुरु का काम माँ ने किया, भंगी का काम माँ ने किया, दही का काम माँ ने किया, नाई का काम माँ ने किया, दर्जी का काम माँ ने किया, धोबी का काम माँ ने किया। बोलो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान सिखाना, नीचे नीचे मेला उठाना, ऐसे माँ ने किया। अब माँ की कोई माँ के उल्ल हो सकता है, परंतु तो माँ के पग पड़ जाए, मारे हाथों भोजन करने राजी हो जाए, इतने में राजी हो जाए। बोलो माल तो मिले हमारे को, राजी हो जाए माँ। ऐसे संत महात्माओं के ऋण कोई कोई उतार नहीं सकता, क्या दशा क्या दशा होगी, परंतु उसके आचरण के अनुसार बन जाए वैसा ही, तो देख कर खुश हो जाए, गुरु जी खुश हो जाए, ऋण हो गए। पढ़ाई करा जाए तो गुरु का ऋण कैसे उतरे, कि सभा के बीच में ठीक तरह से बात बता दे रहे, ठीक है, तो दूर बैठे बैठे खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, तो हम ऊर्ण हो जाते हैं, माफ हो जाता है, ऋण उतरता नहीं है। इस वास्ते दूसरे घर ने उसको रहना, तो राग द्वेष बुद्धि इंद्रियों का आचरण करना, परंतु ऋणी सदा है रहना, मन हृदय हृदय से ऋणी रहना नहीं है, अच्छा नहीं है। उनकी कृपा माने, उनका उपकार करे, सेवा करे, तो सेवा से ऋण उतर नहीं जाता है, सेवा से खुश हो जाते हैं। तो भाई माँ का कितना ऋण है, बड़ा भारी ऋण है, माँ का बाप भूल जो सब कुछ, बोले माँ बाप को मत भूल जो भाई, ये ऋण उतरेगा नहीं, अपना सब समय लगा दे माँ के चरणों में, लौट जाए चरणों में पड़ जाए, आज्ञा पालन कर ले और माँ के हाथ से जी मिले, माँ राजी हो जाए, जी माँ कर राजी हो जाए, समझे को ब्रह्मा से राज दे, उस पीस पर राज कर दे, ऐसी मिले रहे बेटा, ये दे और सी मिले, इतना रह रहे, कैसी माल तो मिले हमारे को, राजी हो जाए माँ, ऋण उतर जाए। इस बात ऐसे संत महात्मा है, हमारे को ज्ञान हुआ, मुक्ति हमारी हो जा रही, महाराज राजी हो जाए, गुरु महाराज राजी हो जाए, ऋण उतर जाए, माफ हो जाए सब, समझे। नहीं तो ऐसी कोई भेंट है ही नहीं, क्या बताओ, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते, उसे समान कोई पवित्र नहीं, वो ज्ञान दे दिया। पर एक बात हो रही, माँ तो आशा रखती है मेरे बेटा हुआ है, बहू आ गई जी, हुकुम चलाऊंगी, पर संत महात्मा आशा ही नहीं रखते, मेरा बेटा चेला, वो आओगी ये हमारी सेवा करेगा, हमारे अनुकूल बन जाएगा। अरे अनुकूलता को है ही नहीं, मत सुख दुख के समय के सलाह वाला वो है, तो विराग साथ ही भी नहीं, इस बात उनकी सेवा नहीं करते कोई परवाह नहीं। उसके विरुद्ध चले तो भी वे नाराज नहीं होते कि भाई हमने अपना काम किया, ये अपना काम करता है, हमने ठीक समझा वो बात कही, ये ठीक समझा यही करता है, अपनी समझ ठीक करते हैं सभी, गुस्सा इस बात का विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है कि उसको यही अच्छा लगता है करता है, ये बात है मेरा। तो सुख दुख के समय कृत्वा, परंतु सेवा में समता नहीं होती है, वहां किस तरह से सुख पहुंचे, किस तरह आराम पहुंचे, किन किस इनका सम्मान हो, किस तरह इनकी महिमा हो, कैसे इनको आराम हो, ये गुरुजनों के लिए, माँ बाप के लिए मनुष्य का कर्तव्य है। सास ससुर कैसे हो, सास राजी कैसे हो, खूब काम करे अच्छे से, सास ताड़ना करे तो राजी हो जाए, निहाल हो गए, इतना काम तो हो गया, इतना पाप नष्ट हो गया, अब सेवा करके और देगा पाप दूर कर देंगे, ऐसे काम करे महाराज, व्यवहार में सबको सुख पहुंचाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये समता प्राप्त करने का उपाय है। गंगा जी से उस पार जाना चाहता है और यहां से ठीक उस सामने वहां पर चले जाए तो जान नहीं देती गंगा जी, अच्छा उत्तर कर जाओ तो गंगा जी धक्का लगाती, जो सामने जाना चाहते बहुत दूर जाकर निकलेगा। पार करने वाला जोर से कोशिश करता है कि सामने चल जाएगा, यहां से सामने पार नहीं जा सकता, तो सामने पार कैसे जाओ भाई, जोर लगा हुआ है यूं चलने का, सामने सामने चलने का यूं। तो गंगा जी बोले जाए फिर भी समतम हर ठीक सामने नहीं जा सकेगा, गंगा जी ले जाएगी, ऐसे संसार का प्रवाह नीचे की तरफ ले जा रहा है, उनमें क्या करे, समता लाने के लिए कठिन से कठिन काम वो अपना सामना ले, सामने प्रवाह चलना पड़ता है, दुख देने वालों को सुख देने वाला तो होता है, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे वाला ही वो भलाई भलाई करता, वो मंद मंद करता रहे करता रहे, वो तो भलाई भलाई करते अपने, तो उसको ऋण नहीं होता, तो पहले से अपना कृपा ही उनके जैसे प्रश्न तो वैसे ही करता रहता है, ऐसा करने से समता आती है। फिर भी समता में कुछ दुख धक्का लगे हो जाएंगे, उस समता का अभिक्रम का नाश नहीं होता, यह क्या मतलब हुआ, अभिक्रम का नाश नहीं होता, आरंभ का भी नाश नहीं होता, पुण्य कितना ही किया जाए वो फल देकर नष्ट हो जाता है, पर निष्काम भाव हो फल तो उसका हम ग्रहण करते नहीं, ऐसे कर्म नष्ट होता नहीं, ये बात है खास बात, ये हमें मिली बात, अभिक्रम का भी नाश नहीं होता, जितना निष्काम भाव हो गया है वो तो स्थायी हो गई आपके पास में असली पूंजी, अब और काम करोगे तो फिर निष्काम भाव हो जाएगा, समझे, ये अर्थ मिला, मैं अभिक्रम ना सोचती, अभिक्रम का आरंभ कर दिया, थोड़ा भी कर दिया, किसी को एक गिलास पानी भी पिला दिया, निष्काम भाव, न मान है, न आदर है, न सत्कार है, न उसे लेना है, न किसी नहीं, बड़ा अच्छा ऐसा जल पिला दिया, मैं मां करी राजी हो गए, तो ठक्का हो गया बया उसके, तो वो तो ठीक रहा नहीं उसका, इस वास्ते कोई किसी तरह की कामना न हो, निष्काम से किया जाए उसका आरंभ नहीं होता, वो नित्य होता है सत्य, और भगवान के लिए अजा कर्म, कर्म से ही वो तदर्थी है वो सत्य, और सत्य होता है सत्य का नाश, ना भाव भी देते सता सत्य का अभाव नहीं होता, इस बात नाश कैसे हो, तो ये बात है, नेहा भी क्यों ना सोचती, निष्काम भाव का नाश नहीं होता, निष्काम भाव से किया हुआ कर्म है वो कर्म फल देकर नष्ट नहीं होता, कर्म तो चाहता नहीं, फल चाहता नहीं, फल मिलता नहीं, फल नहीं मिले तो नाश हो कैसे, फल भोगने से नष्ट होता है कर्म, उसका फल भोग लिया नष्ट हो गया, जयराम जी, पर निष्काम भाव से किया वो फल चाहता ही नहीं, फल भोगता ही नहीं, वो तो कर्तव्य समझ करके उनकी सेवा करना अनुकूल बनना है, तो एक बात ये हुई, एक बात तो ये कह दी कर्म बंधनों का नाश होता है, दूसरी बात कह दी कि आरंभ का नाश नहीं होता, तीसरी बात कहते हैं प्रत्यवाय होने विद्यते, उसका प्रत्यवाय नहीं होता, उल्टा फल, सकाम भाव करे उसका तो उल्टा फल भी हो जाता है, विधि में कमी रह जाए कुछ हो जाए तो दंड भोगना पड़ता है। पुत्रेश यज्ञ किया पुत्र के लिए, बड़ा ठीक किया, कोई कमी रह गई तो लंग जा लंगरा ऐसा पड़ेगा बेटा, अंगहीन बनेगा, वो दंड हो गया, पर निष्काम से किया जाए उसका दंड नहीं होगा। पर सिवा उल्टा फल नहीं होता, हम फल चाहते ही नहीं, फल चाहे तो उल्टा फल हो, भूल हो जाती माफ हो जाती हो, उसकी नीयत अच्छी है। जैसे शाम हो गई रात्रि हो गई, नौकर गाड़े दीपक रोज लालटेन चढ़ो, लालटेन चौसाने ले गया खोल गोड़ा टूट गया, कांच का गोड़ा टूट गया, अरे कैसे कैसे करता है, मैं धमका उसको और ज्यादा कर पैसा काटेगा तुम्हारा, कैसे तोड़ जाइए। और कोई सज्जन आए भाई दीपक अच्छा अच्छा मैं कर दू दीपक देव मैं कर दू, उसने चांस लगाया उसके हाथ से गोड़ा टूट गया तो उसको धमकाएंगे, देखो भाई हमारे क्या कर रहे हैं, दूसरी गलती हो गई, कहते भाई ये गलती हमारे से नहीं होती क्या, ये हमारे से ही हो जाती है, उसे कोई हर्ज नहीं, कारण उसे कोई पैसा लेने के लिए नहीं किया, प्रेम से किया आदर से किया, उसको दंड नहीं होता, प्रतिवाय होने भी देते उसका उल्टा फल नहीं होता। ये दो बात बताई, नेहा भी कमना सोचती प्रतिवाय होने भी देती, तीन हो गए। अरे स्वल्प मप्य से धर्म से त्रायते, इसका थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय से रखा करता है, महान भय क्या धर्म मर समझे, कैसे कि वो समता है वो केवल कल्याण करने में ही काम आवेगी, उल्टा फल तो क्या हो, उसका उल्टा फल भी नहीं होता है, यज्ञ से कोई वर्षा हो गई कोई स्वर्ग हो गया ब्रह्म लोग चले गए वहां भोग भोग लिया, स्वल्प से स्वल्प भी महान भय से रक्षा करने में काम आवे, निष्काम भाव कल्याण में काम आवे, केवल उद्धार में, ऐसी बात वो आपके कल्याण में भर्ती होगा, वो फिर बढ़ेगा। एक कारण जैसे जैसे रुपये पैसे है ना, किसी को दे दिया जाए तो रात में बढ़ता है रुपया, कितना घंटा रहा रात में भी ब्याज दिन में भी ब्याज, रात दिन कमाता है रुपया, रुपया है वो कमाता है रात और दिन ब्याज होता है, ऐसे निष्काम भाव है, पढ़ा पढ़ा कमाता है निष्काम बना देता है, वो पढ़ा पढ़ा बढ़ता है उसको निष्काम बना देता है, शेष बना देता है, आरम्भ हो गया तो बड़ा ही होता है, सत्संग में लग गए प्रियता होगी तो लग ही जाए फिर समझे, अच्छे काम में लग जाते हैं तो वो अच्छा काम उनको फिर लगाता है भीतर में, बार बार लगाता है, तो निष्काम भाव से सेवा करना शुरू कर दिया तो वो सेवा कल्याण करती, तो स्वर्ग में भी अच्छे धर्म से थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है महान भय से रक्षा करता है, मानो कल्याण करता है, बंधन तो होता ही नहीं और सुखदायी फल भी नहीं होता, केवल कल्याण में ही काम आता है, ये बताया ऐसा थे बेटा सांख्य बुद्धि योग्य तो मान सुनो, अब योग्य भी सुनो, योग की क्या बात है, कर्म बंधन प्रयास थी नेहा भी कमना सोचती प्रतिभा विद्य थे स्वल्प मुक्ति से धर्म से सहाय थे महतो भयात महान भय रक्षा करता है, ऐसी कभी होगी महिमा है वो भगवान के मेरे सुन तो सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभ हो जाए, ये समता है ऐसे तो सांख के दृष्टि से तो कह दी भैया योग के दृष्टि से सुनो, उस योग की महिमा होते चार चीजें, ये हो गया 40 श्लोक, सुख दुखे समय कृपा 38 और ऐसा तो बीता सांख्य ये 39 हो गया, बुद्धि योगी कौन सा बुद्धि चार बातें हो गई, दो उसमें हो गई एक उसमें हो गई बीस में। तीन भाषण होगी तो सब होते 40 श्लोक हो गए। अब 40 के बाद 41 से 44 तक का प्रकरण है और 44 तक चार श्लोकों में व्यवसायत्मा बुद्धि की महिमा के व्यवसाय निश्चय कर लिया गया, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा निश्चय कर लिया, वो निश्चय बहुत निहाल कर देगा, जैसे ये बताया ना निष्काम कर्म ऐसी बात है, वो निश्चय एक ही चीज होती है। संसार में मनुष्य का अगर कर्तव्य है तो एक ही कर्तव्य है, हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, चाहे सो सुख पाओ दुख पाओ वो करना है, जो भगवत प्राप्ति की बात मिल जाए चिपक जाए बस इसको छोड़ना नहीं है, ये छूट नहीं जाए। ऐसे सत्संग हुए कि जो बात बढ़िया लगी 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 सदावास हो गई, अब दूसरी को बात सुनाओ तो पूर्ण हो गया, ऐसी बात है। स्वल्पम परिस्थिति में से चाहे तो मत हो गया। अब व्यवसाय आत्मिक बुद्धि है ना 41 में आई और भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम त्याग व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न भी नहीं आते, यहाँ तक सुनाया चार श्लोकों का प्रकरण है, ये बात है। अब कोई इसमें शंका हो तो बोलो भाई, ना कहा जिसमें शंका रहेगी हो संदेह रह तो बोलो, ये बात सुन तो किस पर 38 39 40।